पिछले रविवार आप जो लोग यहाँ पर थे और आपको याद होगा कि हमने देखा था कि हमारा परमेश्वर सार्वभौमिक परमेश्वर है और वो योजना बनाता है और उन योजनाओं को पूरा करता है। और हमने इस बात पर भी ध्यान दिया था, देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर एक परमेश्वर की सनातन योजना के तहत हुआ है। एक और परमेश्वर योजना बनाते हुए अपने आप को इस तरह से ले चल रहा है। और हमने उन सारे पुराने नियम से लेकर, उत्पत्ति से लेकर, हमने कई रेफरेंसेस को देखते हुए हम नए नियम में मत्ती में आए थे, जहां प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन है। और फिर हमने इस बात को भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में चार महिलाओं का वर्णन है, चार स्त्रियों का वर्णन है, तामार रूथ, राहब, बैतशबा। सो चार महिलाओं के बारे में। और हमने देखा कैसे ये अन्य जाति पृष्ठभूमि से महिलाएं थीं, लेकिन क्यों परमेश्वर ने इन अन्य जाति महिलाओं को, जबकि वंश पुरुष से चलता है, लेकिन फिर भी क्यों परमेश्वर ने इन चार महिलाओं को जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से थी अपने इस वंशावली में शामिल किया। और पिछले इतवार जो आप लोग यहां पर थे आपने उस पर ध्यान दिया होगा, हमने सी का साथ मिलकर के, आज हम थोड़ा सा उसी क्रम में आगे बढ़ना चाहेंगे। और आज मत्ती में जब हम उस दिन हमने समाप्त किया था, तो मत्ती के 18 पहले अध्याय और उसके 17 पद में आकर हम रुक गए थे। आज हम 18 पद से लेकर आगे दूसरे अध्याय में खास तौर से देखना चाहेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस जन्म के बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी थी, करीब प्रभु यीशु मसीह के लिए 7 उपनामों का उपयोग किया गया इन दो अध्याय में। 7 उपनामों या टाइटल कहिए, ये जो यीशु मसीह के लिए किया गया है। इससे पहले कि प्रभु की सेवा आरंभ हो, परमेश्वर की सनातन योजना उत्पत्ति से चल रही है। और हमने बार बार उन वचनों को देखा था कि किस प्रकार से परमेश्वर उन वचनों के अनुसार उन बातों में आगे बढ़ता जा रहा है। एक और मनुष्य अपनी योजना बना रहा है, मनुष्य अपने मन के अनुसार चल रहा है, मनुष्य अपने कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी सारी योजना, सारे कार्य, सारे प्रयास जो धार्मिकता के हैं वो विफल होते जा रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से परमेश्वर अपनी योजना को लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और जब जैसे हम आते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के जन्म के साथ साथ क्यों प्रभु के इन नामों को या अपनामों को भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, या परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत द्वारा इन नामों को लोगों तक पहुंचाया। नाम का बड़ा अर्थ है बाइबल में, हमारे जीवनों में भी नामों का अर्थ पाया जाता है। और मैं कई बार जब बच्चों का डेडिकेशन करता हूं तो समय पेरेंट्स को इनकरेज करता हूं कि प्रार्थना के साथ बच्चों के ऐसे नाम दे जाएं ताकि उनका जीवन, उनका चरित्र उन नामों के अनुसार आगे बढ़ सके। ये एक अलग विषय है लेकिन इस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। पर 5 बार पहले और दूसरे अध्याय में यह परमेश्वर ने अपनी योजना को अपने नबियों के कथन के द्वारा योजना को पूरा किया और उसका उद्घोषणा या भविष्यवाणी नबियों के द्वारा की गई थी। पहला अध्याय उसका 22 पद लिखा हुआ है यहां पर, तब हम आगे बढ़ेंगे पहले इन बातों को देखकर। अब यह सब इसलिए हुआ कि प्रभु ने जो वचन नबी के द्वारा कहा था, दूसरा अध्याय उसका 5 पद, उन्होंने उसे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी के द्वारा ऐसा लिखा गया, कहा गया, लिखा गया। 15 पद, और हेरोदेस की मृत्यु तक वही रहा और कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा गया था। 2 अध्याय उसका 17 पद, जो वचन यर्मिया नबी के द्वारा कहा गया था। 2 अध्याय उसका 23 पद, जिसके और नासरत नामक एक नगर में जाकर लगा जिससे कि नबियों के द्वारा कहा गया वचन पूरा हो। सो पिछली बार जो हमने देखा था, हम बार बार इस बात पे फोकस कर रहे थे कि परमेश्वर जो भी कार्य कर रहा है वो उसकी आरंभ से योजना है और उस योजना के तहत वो चल रहा है। और हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और हमें परमेश्वर के गुणों को के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जितना अधिक हम परमेश्वर के गुणों को जानते हैं उतना अधिक हम परमेश्वर को जानते हैं, उतना अधिक हम परमेश्वर, और उतना अधिक हम इस प्रतिनिधिशीलता में रहते हैं कि हमारा जीवन आना स्वभाव परमेश्वर के गुणों के स्वरूप बनता चला जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। सो जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस सच है नबियों के द्वारा बातों कराया, और पहला पत्रस में पहले अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे उसके 10 पद से तो वहां पर भी पत्रस इस बात को कहता है जिनको परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा पहले ही से नबियों के अंदर डाल दिया था। पत्रस भी वहां इस बात को करता है। सो मैं इस बात को इसलिए बार बार कह रहा हूं कि हमारे दिमाग में जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उस पर विश्वास करते हैं या इस क्रिसमस को मना रहे हैं, तो हमें देखना है कि हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर योजना बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर योजना को लेकर चलने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, और जो वो कहता है उसको वो पूरा करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे लेकिन प्रभु परमेश्वर का वचन जो कुछ उसके मुख से निकला है एकमात्र बिंदु बुना पिरोवे नहीं टलेगा। बार बार उसके बारे में लिखा है। सो हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की महत्वता पे होना जरूरी है क्योंकि वचन हमारे जीवन को संभालने वाला है, और इसीलिए इन वचनों के साथ ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि सात नामों को जल्दी जल्दी हम देखना चाहेंगे। सबसे पहले जब 18 पद में आते हैं, यद्यपि उसके लिए 16 पद में भी कहा गया है, 16 पद में याकूब से उत्पन्न यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम का पति, जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। 18 पद में अब मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। सबसे पहले जो यीशु के लिए उपनाम आया है मसीह का उपनाम आया है। क्यों सबसे पहले इस सूची में मसीह शब्द को रखा गया? मसीह शब्द का मतलब है अभिषेक किया गया, अनॉइंटेड। के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं। परमेश्वर ठीक समय पे कार्य करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर असंभव का संभव परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उसके तहत होकर वो यीशु का जन्म इन सारी रीति से हुआ है। तो जब मसीह शब्द की बात करते हैं तो मसीह शब्द के लिए जैसे मैंने कहा उसका मतलब है अभिषेक किया हुआ। बाइबल में जब अभिषेक के बारे में हम देखते हैं तो तीन विशेष अलग अलग प्रकार से अभिषेक को देखते हैं। एक सामान्य अभिषेक बहुत सारे लोगों के लिए राजा का और याजकों का अभिषेक, वो आत्मिक तंग में देखा जाता है, लेकिन नए नियम में भी आकर हम अभिषेक देते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना करी, तेल के द्वारा अनॉइंट करके या अभिषेक करके प्रार्थना करी, वो याकूब में भी देखते हैं। लेकिन ये अभिषेक यीशु मसीह का एक विशेष योजना में था। क्यों, क्या मतलब था इसका? क्यों परमेश्वर इस वचन में सबसे पहले और नामों की जगह मसीह नाम को सबसे पहले रख रहा है? आरंभ से हमने उस दिन उत्पत्ति में देखा था जो यहां पर थे कि मनुष्य पाप में गिर गया, और पाप में गिरने के बाद मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया। अब उस पाप में गिरने के बाद मनुष्य परमेश्वर से अलग होने के कारण वो अपनी योजना को बनाने लगा, और उस योजना को बनाने के साथ साथ अब वो बलिदान की प्रथा भी आ गई, और बलिदान के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंचना चाहता था, और वो बलिदान पशुओं का, पक्षियों का, जानवर का, इन सारी चीजों का अपनी ऐसियत के अनुसार वो बलिदान चढ़ाने लगा, और तरह तरह से और बलिदान चढ़ाने द्वारा वो अपने पापों की क्षमा की आशा कर रहा था। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि मनुष्य के पाप का छुटकारा इन पशुओं से, इन जानवरों से, इन पक्षियों से नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था। और इस जो मसीह है, इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह सेवा में आए, और जब सेवा में उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि लोग मुझे ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, तुम मुझे क्या कहते हो? मत्ती उसके 16 अध्याय में पत्रस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और जैसे ही पत्रस ने इस बात को कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने तुझ पर प्रकट करी है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की ये सनातन योजना है कि वो काम जो पशु और जानवर और पक्षी नहीं कर सकते थे उसको करने के लिए एक ऐसा अभिषिक्त संसार में आ जाए जो उस कार्य को पूरा कर सके। और इसलिए परमेश्वर ने इस मसीह को इस संसार में मनुष्य बनकर भेज दिया जो परमेश्वर का मसा किया हुआ था, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था, अभिषिक्त था कि वो मेमना बन जाए ताकि वो मनुष्य के लिए बलिदान हो जाए। इसीलिए जब जैसे ही प्रभु यीशु मसीह सेवा में आते हैं और उसके यौना के हम पढ़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह की यौना देखता है और जब वो सामने आते हैं तो यौना इस बात को कहकर परिचय कराता है कि ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा इन लोगों के अंदर प्रकट करा था कि ये मसीह किस उद्देश्य से संसार में आ रहा है। और ये सबसे बड़ा काम था उसका कि वो यहां पर आकर मेरे और आपके लिए पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे। मेरे प्रियो, एक पापी को छुड़ाने के लिए, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, एक कैदी को छुड़ाने के लिए कैसे, कैदी व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता, वही व्यक्ति कैदी की बेल रह सकता जो कैद से बाहर हो। एक पापी को छुड़ाने के लिए पापी व्यक्ति नहीं छुड़ा सकता। सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और इसलिए अवश्य था, अब इस ऐसी योजना की आवश्यकता थी कि उस पापी मनुष्य को छुड़ाने के लिए ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर आए जो निष्पाप हो। और इसलिए परमेश्वर ने इस योजना में होकर प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि वो उसका अभिषिक्त बनकर के इस पृथ्वी पर आकर उस परमेश्वर के कार्य को मेरे और आपके लिए पूरा कर सके, मेरे और आपके पापों के छुटकारे के लिए वो बलिदान हो सके। पशु मनुष्य से बड़ा नहीं है, पशु की मृत्यु से मनुष्य का छुटकारा नहीं हो सकता था। इसलिए सबसे पहला नाम उसके लिए कहा गया पर वह जो मसीह कहलाता है। और तब आगे चल के फिर से मसीह शब्द बहुत सारे बार हम देख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा केवल इतने ही तक रखकर आगे बढ़ना चाहूंगा। तो पहला नाम मसीह है जो परमेश्वर का अभिषिक्त किया गया है एक विशेष कार्य के लिए जो मनुष्य के लिए उस पूरा करना है कि अर्थात परमेश्वर की ओर से वो मनुष्य के लिए पापों के लिए बलिदान हो सके। दूसरा आगे चल के हम देखते हैं तो दूसरा नाम उसका आया है और यीशु 21 पद में वो पुत्र जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हम बार बार यीशु नाम के बारे में सुनते चले आए हैं, बार बार सुनते चले आए हैं, कह रहा तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों के का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार का मतलब क्या है, उद्धार का मतलब क्या है, अगर एक सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूं तो यह है कि मनुष्य की आत्मा का, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के आत्मा के साथ विलय हो जाना ये उद्धार है। आप किसी कॉन्सेप्ट में चले जाइए, अंतिम यही है, यद्यपि थ्योरियां बहुत अलग अलग हैं लेकिन अंतिम लक्ष्य यह है। जब हम दूसरी मंत्रों के बारे में बात करते हैं तो वे जानते हैं कि मानव सृष्टि जो है सबसे श्रेष्ठ सृष्टि, ये मानते हैं इस बात को। तो क्यों क्यों उद्धार जो मोक्ष है ये मेल है परमेश्वर के साथ। पिछली बार भी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपके साथ शेयर कर रहा था और बार बार हम इस बात को विचार करते हो कि पाप के कारण मनुष्य अलग हो गया, यशायाह उसके 59 अध्याय में लिखा हुआ है, और तुम्हारे अधर्म के कारण परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनता और क्योंकि वो तुमसे दूर हो गया, तुमसे अलग हो गया। अगर यशायाह 59 उसके दूसरे तीसरे पद को पढ़ेंगे वहां स्पष्ट लिखा हुआ है परमेश्वर अलग हो गया। लेकिन अब ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में एक मध्यस्थ, मेरे और परमेश्वर के बीच में, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ बनकर खड़ा हो गया कि वो उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान करे और बलिदान के बाद वो मेरे और आपके लिए परमेश्वर के साथ जोड़ने का साधन बन जाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अगर जन्म के साथ साथ क्रूस पर बलिदान ना हुआ होता, अगर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाना होता, मेरे प्रियो उसके जन्म की कहानी शायद अधूरी रहती, आज क्रिसमस ना मनाया जाता। लेकिन बड़े दिन का अर्थ जब पूरा हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने उस कार्य को, उस उद्धार के कार्य को करने के लिए स्वयं मध्यस्थ बन गया, स्वयं बीच में आगे खड़ा हो गया, ना केवल उसने अपने आप को बलिदान किया लेकिन उस उद्धार में मुझे और आपको विश्वास कर प्रवेश करा दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस पर विश्वास करने के द्वारा, पापों की क्षमा को प्राप्त करने के द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो गया। मैं अक्सर चित्र में जब बनाता हूं तो इस तरह से बनाता हूं कि यहां मनुष्य पाप में है, यहां परमेश्वर है और बीच में पाप की खाई आ गई है, लेकिन उस बीच में पाप की खाई पर क्रूस आ गया जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया और उस क्रूस के द्वारा पापी मनुष्य का और परमेश्वर का मेल हो गया, वो एक ब्रिज बन गया, एक ब्रिज बन गया। यह है उसका नाम यीशु रखता, जो उद्धार करेगा, मनुष्य को परमेश्वर के पास लौटा लाएगा, मनुष्य को परमेश्वर से पिता से मेल करा देगा। और मेरे प्रियो, बिना यीशु के उद्धार नहीं है। बिना यीशु को अपनाए, बिना यीशु को स्वीकार करें, उद्धार नहीं है। कोई और दुनिया की चीज नहीं। लोग तरह तरह से चीजों को सोचते हैं, बनाते हैं, कई सारे मत बन जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की योजना में प्रभु यीशु मसीह का नाम सब श्रेष्ठ है। ना केवल उसने लिखा है यीशु, लेकिन तीसरा नाम लिखा हुआ इम्मैनुएल। बार बार गीत गाते हैं, सुनते हैं, इसके शब्द को, अर्थ को जानते हैं। क्रम देखिए, परमेश्वर का वचन किस क्रम में रख रहा है। बाइबल जो लिखी गई है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा सब कुछ को, एक एक शब्द को लिखवाया है। क्रम उसका देखिए, पहला मसीह है, वो बलिदान होगा, यीशु बलिदान के द्वारा उद्धार करेगा, और इम्मैनुएल, तब वो मेरे और आपके साथ अनंत काल तक रहेगा। बिना उद्धार के हम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति का आनंद नहीं उठा सकते। बिना उद्धार के, बिना उसके बलिदान पर विश्वास करे, हम कभी भी वो सच है, उसका नाम इम्मैनुएल, जिसका अर्थ है वो हमारे साथ है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जन्म के समय में उसके लिए कहा गया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने संसार से सेवा को पूरा करके आगे जा रहे, बढ़ रहे थे और उठाए जाने वाले थे, उन्होंने मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 20 पद में कहा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, शिष्यों से कहकर उन्होंने डांस लाया। एक वो जन जिसने मसीह के बलिदान को जाना है, एक वो जन जिसने मसीह के बलिदान को स्वीकार किया है, अपनाया है, और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का अनुभव करके परमेश्वर पिता के साथ जोड़ा गया है, उसके साथ परमेश्वर की उपस्थिति अनंत की प्रतिज्ञा में पाई जाती है। सो कहता है कि और उसका नाम इम्मैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे प्रियो, परमेश्वर का साथ होने का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है, और ठीक है, तो जैसा चाहे हम जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बना रहता है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहता है। थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए। मान लीजिए एक पिता है और उसके साथ बच्चा उसका जा रहा है, और बच्चा जानता है कि मेरे पिता इन चीजों से को पसंद नहीं करता। बच्चे का हाथ पिता ने थामा हुआ है, वो उसको लेके चल रहा है, और बच्चा उन चीजों को देख रहा है, देखने के साथ साथ उनके ओर जाना चाह रहा है। लेकिन अगर उसका हाथ अपने पिता की ओर थमा हुआ है, वो पिता उसके साथ है और उसका हाथ थमा हुआ है, तो क्या बच्चा उन चीजों को चाहते हुए उसकी ओर जाना पाएगा? जब तक वो उसका हाथ तोड़ करके, छोड़ करके अलग ना हो। परमेश्वर की उपस्थिति न केवल हमारे लिए प्रार्थना का और आशीष का कारण बनती है, न केवल हमारे लिए आनंद का कारण बनती है, निश्चय इसके अंदर आशा छिपी हुई है, इसके अंदर प्रतिज्ञा छिपी हुई है, इसके अंदर प्रोत्साहन छिपा हुआ है, इसके अंदर शांति छिपी है, सब कुछ है, लेकिन इसके अंदर एक सचेतता छिपी हुई है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में होकर हम इस संसार में पाप और बुराई से और अंधकार से बचकर चल सके। ये छुपा हुआ है। और परमेश्वर ने जब कहा, यह जरूर है कि जब हम पदों को देखते हैं तो कई सारी चीजें इसके पीछे आती है। अगर हम उस समय की परिस्थिति को देखें तो इस परिस्थिति में लोग डरे हुए थे, कुछ प्रजा के वहां के लोग थे, वहां की परिस्थिति के कारण भयभीत थे, बहुत सारी चीजें वो एक है, लेकिन उसका वचन केवल उसी समय के नहीं लेकिन अनंत काल के लिए है। पर आज मेरे और आपके लिए, अगर परमेश्वर मेरे और के जीवन में वास करता है, इम्मैनुएल है, तो ना केवल हम निर्भयता का जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन पाप से सचेतता का जीवन व्यतीत करेंगे, और हम उसके साथ रहकर पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, नीति वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, परमेश्वर झूठ से घृणा करता है। पर आगे चल के वही सुलेमान लिखता हुआ है, धर्मी झूठ से घृणा करता है। क्या मतलब है? परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, धर्मी झूठ से घृणा करता है। अगर परमेश्वर झूठ से घृणा करता है, और एक धर्मी जो परमेश्वर के साथ रहकर जीवन व्यतीत कर रहा है, जिसके साथ जो दावा करता परमेश्वर मेरे साथ है, अर्थात तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का गुण धीरे धीरे उस धर्मी के जीवन में आता है, और जो चीज परमेश्वर चाहता है अब वो धर्मी वही चाहने लगता है, जो चीज परमेश्वर नहीं चाहता वही चीज धर्मी भी नहीं चाहता। परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चित्र, परमेश्वर का चरित्र गुण वो उसके अंदर प्रवेश करते हुए बहने लगता है। किसी प्रभु के सेवक ने कहा कि परमेश्वर के हाथ नहीं है, परमेश्वर के पांव नहीं है, परमेश्वर का मुंह नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ परमेश्वर का हाथ है, तुम्हारे मुंह परमेश्वर का मुंह है, तुम्हारे पांव परमेश्वर का मुंह है, पांव है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर का जीवन है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है, इम्मैनुएल है, तो हम ना केवल उसके आनंद में पाएंगे लेकिन उसके साथ साथ उसके योग्य जीवन में बढ़ते चले आएंगे। सो मसीह पहला वो हमारे लिए वो है जो बलिदान होगा। दूसरा ना केवल मसीह लेकिन यीशु जो हमें उद्धार हमारा करा के परमेश्वर के साथ एक संबंध जुड़वाएगा। जब वो संबंध है तब इम्मैनुएल जो हमारे साथ हमेशा हमेशा साथ रहने को तैयार होगा। तब तीसरी चीज आगे चल के क्या कहता है, कहता है दूसरे अध्याय के दूसरे पद में जो चौथा नाम यहां पर आया उसके लिए, यहूदिया का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। और बार बार प्रभु यीशु मसीह के लिए राजा शब्द आया है, यीशु राजा है। जब चरनी में है मजूस इसको राजा देख रहे हैं, जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है मत्ती उसके 21वें अध्याय में, योना उसके 12वें अध्याय में, विजय जुलूस में प्रवेश कर रहा है, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं राजा के नाम में, जब वो पिलातुस के सामने खड़ा हुआ है तब उसके उसको देखकर पिलातुस कह रहा है क्या तू यहूदियों का राजा है। लेकिन जब उसने बलिदान हो गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, तो जब हम अनंत में देखते उसको सिंहासन में प्रकाशित वाक्य में, तब हम उसको देखते हैं अनंत काल का राजा है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, परमेश्वर की योजना है। क्यों इस राजा शब्द का इस्तेमाल किया गया? आरंभ से कदम ब कदम, जैसे मैंने पिछली बार बोला था फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से क्रम से सारी चीज चल रही है। अगुओं के बाद कुछ समय अगुए रहे, न्यायी आ गए, न्यायियों के बाद एक समय आया कि जब राजा उत्पन्न हो गए, लेकिन उन प्रत्येक राजाओं का अपना शासन था, शासन के साथ उनके नियम थे, उनके सब कुछ अधिकार था, सब कुछ था, लेकिन उनके शासन में वो पूर्णता नहीं मिल सकी जो प्रभु यीशु मसीह के शासन में। और इसीलिए उसके राजा होने के लिए पहले से कई बार भविष्यवाणी कर दी गई थी, पहले से उसके लिए पुराने नियम में, मैंने पिछली बार बोला था कि यशाया में करीब 22 बार यशाया की पुस्तक, केवल एक पुस्तक, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसके साथ साथ उसके अधिकार के बारे में वर्णन करती है। इसलिए वो राजा ताकि वो मेरे और आपके जीवन को ना केवल हम परमेश्वर के साथ बनकर चले लेकिन उसकी प्रभुता में भी पाए जा सके, उसके नियमों का पालन कर सके। इसीलिए मत्ती का सुसमाचार जो है सबसे ज्यादा एक राजा के पास उसका शासन होता है, एक राजा की प्रजा होती है, एक राजा को शासन चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए उनके नियम होते हैं। और ये तीन चीजें जरूरी हैं, राजा के पास अपना राज होना है, शासन होना है, राजा के पास अपनी प्रजा होनी है और राजा के पास नियम होने, और ये तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। और अभी तक इससे पहले जितने राजा थे इन सब में गड़बड़ था, लेकिन इसीलिए मत्ती सुसमाचार में हम उस राजा के शासन के बारे में देखते हैं, राजा के नियमों के बारे में देखते हैं और राजा की प्रजा के बारे में देखते हैं, किस प्रकार से उस राजा की प्रजा को उनके नियमों का पालन करते हुए उसके शासन का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ना है। मत्ती में पूरा यही पाया जाता है। और परमेश्वर का आत्मा इस मत्ती के द्वारा किस प्रकार से इस पद को दिखा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह का होगा। मैं जब इस बात पर आपके साथ बांटना चाह रहा हूं, मैं विचार कर रहा था, मैं क्रम को देख रहा था कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा किस क्रम में होकर इन सारी चीजों को, उन उपनामों को रखा है। परमेश्वर हमारा योजना का परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा क्रम का परमेश्वर है, परमेश्वर हमारी सभ्यता का परमेश्वर है, परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है। और उसका ये जन्म, इसीलिए इस जन्म में सब कुछ के मध्य प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विशेष है, वो विशिष्ट पुरुष है, विशेष है। और कहता है कि वो राजा होगा, और ये सच है। उस राजा के बारे में आगे चल के हम देखते हैं, अक्सर हम इस बात पर विचार करते हैं किस रीति से वो वहां पर गए और जाकर उन्होंने उसको सोना लोबान और गंधरस चढ़ाया, जो उसके जीवन की सारी तस्वीर को दर्शाता है, ये किस प्रकार से उसके अधिकार के बारे में दर्शाता है, उसके त्याग और बलिदान के बारे में दर्शाता है, उसके भविष्य के बारे में दर्शाता है, सब कुछ दर्शाता है, लेकिन वो राजा का। सो पहली चीज वो मसीह है, दूसरा बात वो यीशु है मसीह अर्थात मेरे और आपके लिए बलिदान क्या हुआ। दूसरा वो यीशु है जो उद्धार करके परमेश्वर के साथ मिलाने वाला है। तीसरी चीज इमैनुएल है जिसके जिसकी उपस्थिति में परमेश्वर के साथ जुड़ने के बाद हम आनंद उठा सकते हैं। चौथी चीज राजा है। और पांचवी बात उसके लिए आई है आगे चल के हम देखते हैं जो दूसरा अध्याय और उसके छह पद में। हे बैतलहम तू जो यहूदा के प्रदेश में है तू यहूदा के अधिकारियों में से किसी से भी छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल का रखवाला होगा। एक शासक निकलेगा। क्यों शासक का शब्द इस्तेमाल किया गया है? जब हम उत्पत्ति में देखते हैं और उत्पत्ति में जब हमने पहले पिछले इतवार को हमने इस बात पर विचार किया था तीसरे अध्याय के 15 पद पर जैसे ही शैतान ने हवा को बहकाया शैतान ने सोचा कि अब मेरे हाथ में सारा शासन हो गया। वो संसार का शासक बन बैठा और आज भी वो संसार को कई सारे क्षेत्रों में नियंत्रण कर रहा है। और आज भी मैं और आप कई बार अपने आप को भी उसके शासन के अधिकार में डाल देते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह यद्यपि उसने उस क्रूस पर विजय प्राप्त की कुलुसियों उसके पहले अध्याय में बहुत ही अच्छी रीति से लिखा हुआ है कि उसने क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाया। कुरिन्थियों में लिखा हुआ पौलुस कहता है कि उसने क्या जैने मृत्यु को निगल लिया। ये सब कुछ परंतु मेरे प्रियो बाइबल इस बात को बताती है कि और हम इस प्रसार को देख रहे हैं दिन पर दिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर का शासन नहीं है संसार में शैतान का शासन है। और वो खास तौर से अपनी परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर के लोगों पर तो और अधिक आक्रमण करता है कई तरह से। परंतु हम आपको परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सनातन योजना के लिए। वो कहता है कि क्योंकि तुझ में से एक शासक निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल का रखवाला होगा। वो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का जन्म प्रोत्साहन से भरा हुआ जन्म है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म आशाओं से भरा हुआ है। वो कह रहा है कि जो इसराइल का रखवाला होगा अब ये इसराइल केवल याकूब का खानदान नहीं है। अब इसराइल प्रत्येक उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत बड़ा इसराइल है। हमने यीशु पर विश्वास करने द्वारा आपने यीशु पर विश्वास के द्वारा आप उसके राज के वारिस में। परमेश्वर के वचनों को जब बार बार इधर उधर पलट के पढ़ते हैं तो हम उसको उसके मेल को देखते हैं। सो वो मेरा और आपका रखवाला है। पापों से छुड़ाकर इस संसार की यात्रा में मैं आगे बढ़ना है जीवन में आगे बढ़ना है। संघर्ष आ सकते हैं समस्या आ सकती है कठिनाइयां आ सकती हैं मुझे मालूम है मेरे सामने होता है। प्रभु को जानने के बाद भी कई सारी चीज व्याकुलता में डाल देती है बेचैनी में डाल देती है परेशानी में डाल देती है। पर बार बार प्रभु के पास जाना चाहता प्रभु आप ही सबसे बड़े शासन करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने शासन के अधीनता में मुझको रखें। वो शासक है इसलिए उसके लिए कहा गया है क्योंकि वो राजा जो है एक क्षेत्रीय होता है एक देश का होता है एक ये लेकिन इसका राज और शासन पूरे विश्व का है। इसलिए राजा से बढ़कर और एक नाम उपनाम आगे दे दिया गया है जो विश्व में शासन करेगा विश्व में प्रभुता करेगा। और शासन का मतलब है प्रभुता करने वाला। पौलुस कुलुसियों के लिखते लिखे कहता हुआ है कहता है जैसा तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। मेरे प्रिय बहुत इंपॉर्टेंट विशेष पद है जो मेरे और आपके लिए जैसा तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके अर्थात यीशु उद्धार करता काफी नहीं है। मसीह बलिदान कर क्या हाँ वो बलिदान काफी नहीं है लेकिन प्रभु करके अर्थात वो मेरे और आपके जीवन का अवश्य कि प्रभुता करने वाला हो उसका शासन मेरे और आपके जीवन हो। और बड़े दिन का संदेश मुझे और आपको इस बात को रिमाइंड कराता है स्मरण दिलाता है क्या प्रभु का शासन मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में है। इसीलिए पिछली बार जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहानी से आरंभ किया था। हम बर्थडे तो मना रहे हैं लेकिन बालक का पता नहीं वो कहीं और रिश्तेदार के यहां। लोग आके पूछ रहे हैं अरे जिस बालक का जन्म है वो कहां है वो बर्थडे कहां है। बालक इंपॉर्टेंट है यीशु महत्वपूर्ण है। क्या वो मेरे प्रियो वो मेरे और आपके हृदय का शासक है। ना केवल मसीह ना केवल यीशु ना केवल इमैनुएल ना केवल राजा ना केवल शासक लेकिन दो बात को और देख कर समाप्त करेंगे। पंद्रह पद में दूसरा अध्याय का 15 पद में कहता है और हेरोदेस की मृत्यु तक वही रहा कि जो वचन प्रभु ने नबी के द्वारा कहा था पूरा हो मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया है। यद्यपि संकेत पुराने नियम में हम निर्गमन में जाकर देखते हैं, जब निर्गमन में इसराइल लोग मिस्र की बंधुआई में थे तो परमेश्वर ने इसराइलों को उस मिस्र से निकालते हुए उनको निर्गमन उसके 4:22 में पुत्र करके पहला उठा करके संबोधित किया। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह को भी कुछ समय के लिए मिस्र में जाना पड़ा था, अब वो वहां से उसको बुलाया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक खास बात को हम देखते हैं, कह रहा है कि मैंने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और इसीलिए तुरंत आगे चल करके जैसी उसकी सेवा आरंभ हुई और उसने बपतिस्मा लिया, उन विधि को पूरा करते हुए परमेश्वर का आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उठला और कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। क्यों यीशु का जन्म हुआ? इसलिए कि हम उसके पुत्र को जाने, उसके पुत्र को माने और उसके पुत्र की सुने। ये तीन बातें, हम उसके पुत्र को जाने, उसके पुत्र को माने और उसके पुत्र की सुने। परमेश्वर पिता ने बार बार इस बात का कहता है ये पुत्र है, और हम बार बार देखते हैं परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना में भी और अन्य स्थान में, जहां बार बार प्रभु यीशु मसीह उसका पुत्र है। ये पुत्र अर्थात वो स्वयं परमेश्वर में से होकर आया, इसलिए परमेश्वर का जन्म लिखा है, और परमेश्वर देहधारी हुआ, उस पुत्र में होकर इस पृथ्वी पर आया। वो उसका एक भाग है, उसका एक अंश है। जिसने पुत्र को देखा उसने पिता को देखा है। बिना पुत्र के द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुंच सकता है। पुत्र को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र की महत्ता है, और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करना चाह रहा है कि सच है, मैंने अपनी योजना में न केवल उसको रखा लेकिन वो मेरा पुत्र है, अर्थात वो एक दिन मेरे साथ और मुझ में पुनः वास करेगा। सो चौथी पांचवी बात ये पुत्र। तब अंतिम चीज जो हम देखना चाहते हैं वो ये है, उसने कहा उसके लिए 23 दूसरे अध्याय के 23 में, और नासरत नाम एक नगर में जाकर रहने लगा जिससे कि नबियों का द्वारा कहा गया वचन पूरा हो, वो नासरी कहलाएगा, यीशु नासरी। नासरत जो था वो तुच्छ जाना जाता था, छोटा सा स्थान था, लोग उसकी कोई महत्वता को नहीं जानते थे। जब नतनेल प्रभु यीशु मसीह के पास आए, यूहन्ना उसके पहले अध्याय में और उसके भाई ने उसके बारे में बताया सब कुछ, नतनेल कहता है क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? असमल लगता है लोगों को। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है किसने छोटी बातों के दिन को तुच्छ जाना? परमेश्वर का वचन कहता है छोटे जो मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये भाया है। परमेश्वर जो कार्य करता है हमारी सोच से अलग होकर करता है। यहूदी आज तक इस बात की प्रतीक्षा में कि शायद जब मसीह आएगा वो बहुत बड़े राजघराने में पैदा होगा, बहुत बड़ी उसकी चर्चा होगी, बहुत कुछ उसका नाम होगा। उनके लिए समझना कठिन है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को अद्भुत रीति से पूरा करता है। इसीलिए मैंने आरंभ में पहले कहा था कि लूका इस बात को बोलता है कि परमेश्वर हमारा असंभव का संभव करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य की दृष्टि में नहीं है वो परमेश्वर की दृष्टि में है। और ये नासरत और ये नाम इतना अधिक आगे चलकर यीशु नासरी नाम सामर्थ्य हो गया कि दुष्ट आत्मा भी इस नाम से थरथराने और कांपने लगी, यीशु नासरी। मेरे प्रिय, क्यों मैं इस वचन को आज आपके साथ बांटने की कोशिश कर रहा हूं कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जब बातों को देखते हैं तो हम ध्यान दें कि परमेश्वर किस प्रकार से उस योजना में होकर इस यीशु को संसार में भेज रहे हैं। इसीलिए मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा उसे जाने, उसे माने, उसकी सुने। बड़े दिन का संदेश मेरे और आपके लिए है, और यही संदेश हमें दूसरों तक पहुंचाना है। जो लोग पाप में मर रहे हैं, विनाश हो रहे हैं, प्रयास तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको आशा नहीं मिल पा रही है। हम लोग जब 12 में थे, एक टीचर जिनके साथ मेरी वाइफ पढ़ाती थी, वो एक दिन हमसे बात करने लगी और कहने लगी कि मेरा नाम शांति तो है लेकिन मेरे पास शांति नहीं है। ये मनुष्य के साथ होता है लेकिन परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर का जैसा नाम है वैसा उसका काम है। परमेश्वर का जैसा नाम है उसका काम है। मेरे प्रियो, आप अपने बारे में जानते हैं, आप यीशु को अपने जीवन में कैसा देख रहे हैं? क्या वो सच में आपके पापों का छुटकारा हो चुका है, उस बलिदान हुआ है? क्या आपने उस उद्धार का अनुभव किया है जिस उद्धार को देने के लिए आज से दो लगभग 2000 साल पहले वो मनुष्य बनकर आ गया, एक निराशा में आशा देने के लिए, एक अंधेरे मार्ग को उजाला मार देने के लिए। और इसीलिए वो कह सका, मार्ग जीवन सत्य मैं ही। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस बात को दावा दे सका, मार्ग जीवन सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता। स्वर्ग पर विराजमान होकर उस पृथ्वी पर आया मनुष्य, देकर मनुष्य के बीच में रहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और जी उठकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से वो निकला था, आज वहां पर विराज। और इसलिए वो दावा कह सका, दुनिया में जितने आए सबकी कहानी कब्र में समाप्त हो गई, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कहानी कब्र में से निकलने के बाद आरंभ हुई। ये विशेषता, ये विशेषता। और वो राजा जिस राजा के राज में शांति है, जिस राजा के राज में, मैंने समय कम होने के कारण सारे पदों को आपके सामने नहीं बांटा, जिस राजा के राज में धार्मिकता है, जिस राजा के राज में पवित्रता है, जिस राजा के राज में मेल प्रेम है, जिस राजा की राज उसकी सच्चाई और धार्मिकता से भरा हुआ है, जब हम उस राजा पर विश्वास करते हैं, उस राजा राज में अपने आप को डालते हैं, हमारे लिए आनंद की बात हो जाती है कि हम न केवल उसके राज में आनंदित होते हैं, उसका नियमों का पालन करते हुए, लेकिन उसके शासन को, उसकी प्रभुता को भी स्वीकारने लगते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु मेरी और आपके इन दिनों में सहायता करें कि हमारा ये साल का बड़ा दिन क्रिसमस। एक बार मैं एक मैगजीन में लिखता था तुरही में, और तुरही में मैगजीन में एक कार्टून बना के दिया गया, बड़ा दिन मना जा रहा है ना, और नशा और ये सब कुछ किया जा रहा है, और बगल में एक नशा करके पड़ा हुआ है, तो उसमें लिखा था बड़ा दिन प्लस बड़ा दिन इज इक्वल टू सड़ा दिन। उस कार्टून में बहुत सारी गहराई थी उसके अंदर, बड़ा दिन प्लस बड़ा दिन सड़ा। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को दिन को सचमुच में बड़ा दिन करके मनाना चाहते हैं, उसकी प्रभुता को समझना चाहते हैं, उसकी योजना को समझना चाहते हैं, उसकी इच्छा को समझना चाहते हैं, और उसकी इच्छा और योजना को समझते हुए नम्रता के साथ अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना चाहते हैं, फिर ना अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपे, हम उस बड़े दिन के गहरे अर्थ को नहीं समझते। हमारे सुनना आसान है, हमारे प्रचार करना आसान है, लेकिन परमेश्वर की उस महानता को देखिए, जो अद्भुत विशाल परमेश्वर होकर उसने अपने आप को इतना सीमित कर दिया, और उसके लिखा है उसने अपने आप को स्वर्गदूतों से कम किया, उसके लिए लिखा है उसने अपने आप को शून्य किया, उसके लिए लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य करके यहां तक कि आगे कर रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जन्म बिना उसके बलिदान को और त्याग को स्मरण करे हुए व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा। उसके जन्म के साथ साथ उसके उस बलिदान को याद कीजिए, उसकी प्रभुता को याद कीजिए, और प्रार्थना कीजिए, प्रभु इन दिनों में हम और आपके शासन को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में स्थान दे सके।